प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 3 फरवरी 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं इंदर जो रामनगर उत्तराखंड से हैं और रवि प्रकाश सिंह आप पश्चिम चंपारण बिहार से हैं। इंदर और रवि आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स अब कुछ सूचनाएं जो मैं आपको हर फ्राइडे को देता हूं और सूचना यह कि शनिवार और रविवार गस्टेड हॉलिडे होने के कारण डेली ऑडियो प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन कल यानी कि शनिवार को प्रेस क्लिपिंग्स आपको एज इट इज मिलेंगी जिस तरह से अभी मिलती रही हैं। और उसके साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल चीजें भी प्रोवाइड की जाती हैं जिनमें है दोस्तों योजना और कुरुक्षेत्र, इन दोनों के एक एक आर्टिकल, हिंदी के भी इंग्लिश के भी, और इस तरह से 4 आर्टिकल्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही एक साप्ताहिक प्रश्न दिया जाता है जिसे हम लोग वीकली क्वेश्चन कहते हैं जो मेंस एग्जाम के पैटर्न पर होता है आपके जनरल स्टडीज के, वो आपके अभ्यास के लिए होता है और कोशिश की जाती है कि उसमें ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया जाए जिसकी तैयारी के दौरान आपकी सिविल सर्विस की तैयारी भी हो जाए और क्वेश्चन का पैटर्न भी इस तरीके से रखा जाए कि आपको सिविल सर्विस के पैटर्न को समझने में मदद मिले और उस पर आपकी एक तरह से अभ्यास भी उस पर हो जाए। और मित्रों इसके अतिरिक्त स्पेशल ऑडियो गाइडेंस जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको भेजा जाता है। फ्रेंड्स इन सूचनाओं के बाद अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। कल की न्यूज आप लोगों ने सुनी ही और कल के न्यूज में भी फ्रेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना अभी चल रही है, जिस टॉपिक कह लीजिए जो चल रहा है वो अभी बजट ही है। और नो डाउट कि चूंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट सत्र होता है संसद का, बजट का, या कह लीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। आप देख रहे हैं कि पब्लिक स्पीक और उस तरह के जो करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी बजट पर डिस्कशन हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि भले ही सिविल सर्विस के एग्जाम में सीधे सीधे बजट पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बजट क्या है, कैसे सरकार बनाती है, कहां कहां कितना कितना फंड देती है, क्यों वह इस तरीके से कर रही है, सरकार का पैसा कहां कहां आता है, कहां कहां जाता है। तो ये सारी चीजें समझने का मैं समझता हूं कि एक अच्छा अवसर है। और कुछ अगर आप बेसिक डाटास को भी समझ लेते हैं, सरकार की प्रायोरिटीज को समझ लेते हैं, नीतिगत उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, तो फिर फ्यूचर में आपको एक साल की जो आप तैयारी करेंगे खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के, यहां तक कि सोशल सेक्टर को लेकर के भी, तो आप देखेंगे कि उसमें ये जो बजट की जो जानकारी है आपकी बहुत मदद करेगी। तो दोस्तों इसलिए आज बातचीत करने के लिए हम लोगों के पास बस बजट का ही विषय है और हम लोग उसी पर आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। फ्रेंड्स आपने न्यूज में एक हेडलाइन सुनी कि अभी जब नोट विमुद्रीकरण, मेरे मुंह से भी नोटबंदी शब्द ही निकलता है अखबार वार, मतलब मीडिया ने नोटबंदी शब्द इस्तेमाल करके खूब उसका उपयोग करके नोटबंदी ही जबान पर बिठा दिया है। वैसे ज्यादा व्यावहारिक शब्द है नोटबंदी, विमुद्रीकरण कहने में तो दिक्कत होती है और सामान्य लोग समझ भी नहीं पाएंगे, तो अगर मेरी च्वाइस हो तो मैं नोटबंदी ही पसंद करूंगा, तो चलिए मैं नोटबंदी ही कहता हूं। तो मित्र नोटबंदी के दौरान आपने देखा कि ये था कि आप 100 और 500 और 1000 के नोट पुराने जमा कर दीजिए, लोगों ने अपने अपने अकाउंट में जमा किए। उस समय आपने एक देखा होगा जो बात चल रही थी और विपक्ष जो सरकार पर आरोप भी लगा रहा था वो ये था कि मतलब 15 लाख करोड़ रुपए ऑलमोस्ट टोटल 500 और 1000 के थे जिसमें लगभग 14 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा हो गए हैं, 14 लाख कुछ करोड़। तो ये था कि सारा काला धन तो सफेद हो गया है, ये कहा जाता था। तो अब सरकार जो काले धन की बात कर रही थी वो कहां से लेकर के आएगी, जबकि बहुत ही सिंपल सा गणित था उस समय का। अगर आप ऑडियो ध्यान में लाएं तो मैं बार बार आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर बैंक में लोगों ने पैसे जमा कर दिए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सबका सब व्हाइट हो गया है। अब आपको वो रूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिनके अकाउंट में भी अप्रत्याशित रूप से धन जमा हुए हैं, या यहां तक कि मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन ही है, तो ठीक है बिजनेसमैन के लिए था कि वो दिसंबर लास्ट तक पैसा जमा कर सकता है, तो क्या वो इस बीच में अपना लेन देन कर रहा था पुराने नोटों से? जैसे मान लीजिए कि किसी का टर्नओवर, मतलब जो बिक्री है साल भर की, मान लीजिए कि 48 लाख रुपए की है, चलिए मतलब एक महीने की जो बिक्री है वो 4 लाख रुपए की है, ठीक है 4 लाख रुपए की उसकी एक महीने की बिक्री है, और उसने नवंबर दिसंबर में बैंक में जमा कर दिए हैं 40 लाख रुपए, तो दो महीने की उसकी जो सेल होनी चाहिए वो 8 लाख रुपए की होनी चाहिए। अब 8 लाख रुपए की जगह अगर वो 40 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा कर रहा है, इसका मतलब है कि उस दौरान उसकी सेल बहुत ज्यादा हुई है, एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है आपको। तो ये जो 32 लाख की जो ज्यादा सेल है, देखिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख का फर्क तो पड़ जाएगा, 8 लाख की जगह 12 लाख की सेल हो गई किसी वजह से, शादी ब्याह और दूसरे कारणों से, लेकिन 8 लाख का 40 लाख हो जाना एक अव्यवहारिक है, एबनॉर्मलिटी है। तो इस तरह के जो अकाउंट्स दिखे, ये तो मैं केवल एक समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, और भी हैं जिनके, क्योंकि इस तरह के जो व्यापारी हैं या जो व्यक्ति हैं जो अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं, बकायदे असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो अपनी कमाई मान लीजिए कि पिछले साल किसी ने दिखाई है 10 लाख रुपए की, और पता लग रहा है कि इस बार उसने जो अपने अकाउंट में धन जो जमा कर दिया वो 50 लाख रुपए कर दिया है, तो अब वो कहेगा कि नहीं इस बार मेरी 40 लाख रुपए की कमाई हो गई, तो वो फिर विश्वसनीय नहीं है। ठीक है आपने देखा कि आपको ई सत्यापन करना पड़ेगा, उनको नोटिस जारी किए गए हैं, अभी सरकार उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है, आप जस्टिफाई कीजिए कि ये पैसा आपके पास कहां से आया, और अगर डिपार्टमेंट उससे संतुष्ट हो जाता है तो ठीक है कोई बात नहीं, वो मान लिया जाएगा, लेकिन आसान नहीं है। तो इस तरीके से जो ब्लैक मनी अकाउंट में जमा किया गया है उसको आइडेंटिफाई करेगी गवर्नमेंट, और आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि सरकार 3-4 लाख रुपए इस तरह से ब्लैक मनी को पकड़ लेगी, 3-4 लाख रुपए ब्लैक मनी उसकी पकड़ में आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात मित्रों की हुआ क्या है कि अब जो अकाउंट आ गए हैं सर गवर्नमेंट के पास में, सबके अकाउंट हैं और उन अकाउंटों में जो पैसा जमा हो गया अकाउंट्स में, तो अब सरकार के को एक लिंक मिल गया है, अच्छा इसका अकाउंट है, इसके अकाउंट में इतना पैसा आया था, इतना पैसा आया था, हो सकता है कि वो अभी जस्टिफाई कर दें और सही भी हो, लेकिन सरकार की कम से कम अब एक निगाह तो उस पर रहेगी कि नहीं इसने इतना पैसा जमा किया था तो इसको इनकम टैक्स देना चाहिए जो अभी तक वो नहीं दे रहा है, तो सरकार को एक सूत्र मिल गया है, तो इसका भी आगे चलकर इकोनॉमी पर बहुत फर्क पड़ेगा। मित्रों मैं आपको इसको सिर्फ इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो अक्टूबर में मेंस एग्जाम होंगे उसमें हो सकता है काले धन या डिमोनेटाइजेशन जो टू एज ए होल, या अभी जो हुआ डिमोनेटाइजेशन उसके क्या प्रभाव पड़े, उन सबको लेकर के कोई एकाध क्वेश्चन तो आना चाहिए। हालांकि यह भी होता है कि जो टॉपिक बहुत पॉपुलर हो जाता है उस पर वो क्वेश्चन नहीं भी पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमें तैयार तो रहना पड़ेगा। तो दोस्तों वो ई सत्यापन का यह संबंध काले धन से है, आयकर से है, ये मुझे आपको समझाना था फ्रेंड्स। और फिर अब आप देखेंगे कि आज के अखबारों में आपको अब बजट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, लेख एडिटोरियल कमेंट आपको पढ़ने को मिलेंगे, मैं भी आपको एडिटोरियल आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं न्यूज़पेपर की जो मुझे अच्छे लगे हैं, एक हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में छपा है एनके सिंह का जो हमारे केंद्रीय सचिव रहे हैं, और दूसरा है हमारे दैनिक जागरण में है लॉर्ड मेघनाथ देसाई का, ये दोनों आर्टिकल मुझे अच्छे लगे तो मैं केवल ये दो ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इन्हें पढ़िएगा। पूरे के पूरे बजट से अब आपको सिविल सर्विस की तैयारी के लिए तथ्य निकालने हैं, तो मेन तथ्य तो मैंने कल कुछ आपको बताए थे कि आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब आप दो तीन पॉइंट्स देखिए फ्रेंड्स, वो आज के अखबार पढ़ने से जो मेरे दिमाग में आए हैं, हालांकि कल भी वो आए थे लेकिन सारी चीजों को एक साथ गड्ढम गड्ढम में नहीं करना चाहता था। एक प्रश्न जो मैं सिविल सर्विस के लिए प्रोवाइड भी करना चाहूंगा वो ये कि वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते समय ये बात कही कि हम एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, ये उनका स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि सैटरडे को मैं यही प्रश्न आपको प्रोवाइड भी कर दूं कि हम अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात उन्होंने कही है बजट पेश करते समय। मित्रों, इसके बारे में मैं अभी कोई भी डिस्कशन आपसे करने नहीं जा रहा हूं, मैं केवल ये बताने जा रहा हूं कि चूंकि आज आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे बजट पर और आपके पास जो अखबार आए होंगे उनमें भी आर्टिकल्स होंगे, वो भी आप पढ़ रहे होंगे, तो उन आर्टिकल्स में इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। पहले तो प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कहने का क्या मतलब है, फिर औपचारिक अर्थव्यवस्था कहने का क्या मतलब है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाह रहे कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ। आपको इनके अर्थ मुझे नहीं लगता है कि किसी अर्थशास्त्र की किताब में मिलेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि ग्रेजुएशन में तो मेरा इकोनॉमिक्स था, मैंने ये शब्द नहीं पढ़ा, इसके बाद भी मैं लगातार लिखता पढ़ता रहता हूं थोड़ा बहुत, ये शब्द मेरे ध्यान में नहीं आया कि औपचारिक अर्थव्यवस्था और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, ये शब्द आते हैं दूसरे संदर्भों में बहुत आते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये उन्होंने यूज किया है। तो पहले आपको इसको समझना है और इसके बाद देखिए वो कह रहे की ओर बढ़ रहे हैं, तो की ओर बढ़ रहे हैं इसका मतलब है यदि वो बजट पेश करते समय ये बात कह रहे हैं तो यानी कि बजट का जो चरित्र है, जो करेक्टर है, वो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का करेक्टर है। तो अब आप उन बिंदुओं को नोट कीजिए कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जो इसे सिद्ध कर रहे हैं, या ये तथ्य कितना सिद्ध हो रहा है, या कि वित्त मंत्री जी ने ऐसे ही ये बात कह दी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आपको सोचना होगा। तो मित्रों, सैटरडे को चलिए मैं इसी प्रश्न को फ्रेम करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सतर्कता के तौर पर मैंने आज फ्राइडे को ही इसकी घोषणा कर दी है और आप लोग इस पर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो देखिए कि कैसे आप उन चीजों को निकाल पाते हैं। इस पर थोड़ा वक्त लगाइएगा, टाइम दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, फिर आप आर्टिकल्स में आप दूसरी चीजें देखेंगे। एक बात जो मैं कल आपको नहीं बता पाया था, हालांकि वो नोट थी लेकिन मेरे दिमाग में, लेकिन मैं कहने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहता था, वो था फ्रेंड कॉरपोरेट टैक्स को लेकर। आपको ध्यान होगा पहले मैंने आपको इससे पहले के शायद 2 सप्ताह या 3 सप्ताह पहले के डेली ऑडियो में कॉरपोरेट टैक्स के बारे में मैंने समझाया था, खासकर अमेरिकन प्रेसिडेंट जब चुनकर आए थे, कि कॉरपोरेट टैक्स भारत सरकार को घटाना पड़ेगा, मतलब घटाना चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स क्या है मैं आपको समझा चुका हूं, दोबारा समझाने का कोई मतलब नहीं है। आपने देखा है कि उसमें उन्होंने दिया है कि जिनका 50 करोड़ तक का टर्न ओवर है उनके लिए 5% कॉरपोरेट टैक्स कम किया गया है, मतलब 30% से उसको 25% कर दिया गया है, मतलब 5% उनको टैक्स में छूट दी गई है, जो एक बहुत बड़ी रकम है, एक बड़ी रकम है, छोटी मोटी नहीं। अब आप देखिए कि कॉरपोरेट टैक्स का इम्पैक्ट क्या होगा। दोस्तों, ये 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले को दिया गया है, जिसमें आप कह लीजिए लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योग आते हैं, उन्हीं का 50 करोड़ का टर्नओवर होता है। और ये जो लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, आपको जानकारी ये होगी कि हमारे यहां जो टोटल उद्योग हैं उसमें ऑलमोस्ट 95% उद्योग इसी श्रेणी के हैं, लघु एवं मध्यम उद्योग। इसका मतलब है कि 95% जो हमारे उद्योग हैं उनको इतनी बड़ी राहत दे दी गई है, इतनी बड़ी राहत दे दी गई है 5%। इसको आप यूं कह लीजिए कि इनकम टैक्स में राहत है, लेकिन वो इंडिविजुअल को ना हो करके वो उद्योगपतियों के लिए है। अब दोस्तों, अगर 95-96% अगर हमारे उद्योग लघु एवं मध्यम दर्जे के हैं तो इसका मतलब ये है, और जो सच भी है, कि हमारे यहां जो रोजगार प्रोवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगी हैं। केवल हमारे यहां ही नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्री में भी यही स्थिति है, वहां भी सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाले जो सेक्टर है वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, हमारे यहां तो है ही। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इनको 5% की राहत मिली है, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि कैसे ये रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा। मैं केवल इनके माध्यम से इकोनॉमिक्स की कुछ थ्योरीज आपको समझा रहा हूं कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए किसी का 50 करोड़ का टर्नओवर है, मतलब वो 50 करोड़ का व्यापार करता है, टर्नओवर मतलब उस 50 करोड़ का व्यापार करने के बाद उसमें वो फिर 10% कमाई करता है, उसका प्रॉफिट बचता है, यानी कि 5 करोड़ उसको प्रॉफिट बचा। अब 5 करोड़ पर पहले वो 30% टैक्स देता था, तो 5 करोड़ का 30% हुआ 1.5 करोड़ रुपए वो टैक्स में दे देता था, ठीक है। अब वो उसको 25% देना पड़ेगा, यानी कि अब उसको 1.25 करोड़ रुपए टैक्स में देना पड़ेगा, और इस तरह से 25 लाख रुपए टैक्स के उसके बच जाएंगे। तो इस उद्योग को 25 लाख रुपए का फायदा हुआ। अब इस 25 लाख का क्या करेगा ये? अब इस 25 लाख को अपने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, वो अपने इंडस्ट्री को एक्सपेंड करेगा और प्रोडक्शन करेगा। तो जब वो अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करेगा या और कोई नई इंडस्ट्री लगाएगा या इसी की क्षमता को बढ़ाएगा, तो उसे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से जो 5% कॉरपोरेट टैक्स जो घटाया गया है, वह एक प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकेगा। दोस्तों ये आपको थोड़ा सा इस तरीके से बजट को समझना होगा, और प्लीज इसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, जो कि मैंने कहा कि बजट एक अच्छा अवसर है जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे चलकर समझने के लिए अपना बेस बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अगर आप खुद समझने की स्थिति में नहीं हो, तो मेरी एक विनम्र सलाह है कि जो भी इकोनॉमिक्स के जानकार हों, अर्थशास्त्र के जानकार हों, आप उनसे डिस्कस करके और समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ा और रट तो आप लेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि हम यही सब करते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको अगर सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है तो समझने के स्तर पर जाना होगा। तो दोस्तों मेरे पास और भी बात करने के लिए बजट पर कुछ चीजें हैं, लेकिन वक्त नहीं है। चलिए आगे फिर कभी हम देखेंगे, बातें करेंगे। तो पेपर प्रेस क्लिपिंग्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं। फ्रेंड्स अब मैं ईमेल पर आता हूं। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, निखिल सेठी, विशाल जमशेदपुर झारखंड से, चंद प्रभा, अभिषेक राय, बीएम गौतम, आदिल कादरी दिल्ली से, रुपेश शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, सुशील यादव, काजल भारती पटना से, चंद्र प्रकाश अग्रवाल जयपुर से, वीरेंद्र कुमार बेगूसराय बिहार से, और इरफान सैफी सुल्तानपुर दोस्त उत्तर प्रदेश से। तो मित्रों आपका सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और आप लोगों से मैं 2 दिन के लिए अब विदा चाहता हूं। और ये जो 2 दिन है, सैटरडे संडे, आप सबके लिए बहुत सुखद हों, इस कामना के साथ मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।